الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفۃ القرآن کی جلد نمبر 6 سے اور پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تفسیر پڑھ کر کے مکمل کری تھی اس میں جن موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی تو اس میں سے کسی پر بھی آپ کو اگر کوئی سوال ہو اشکال ہو سوال تو سمجھتے ہیں سب لیکن اشکال کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے اشکال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہو کچھ مشکل پیش آ رہی ہو یا آپ کو کوئی دل میں اعتراض محسوس ہو رہا ہو کسی کانسیپٹ کے اوپر کسی بات کے اوپر نا تو اس کو اشکال کہتے ہیں یہ بڑا ایک سمجھ لیں تمیز والا لفظ ہے جو کہ مدارس میں اور دینی حلقوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ایک طالب علمانہ اعتراض پوچھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ لفظ اشکال یہ ہم اپنی ووکیبلری کے اندر اپنی لینگویج کے اندر اس کو داخل کریں تو یہ ایک اچھا اخلاقی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی اشکال ہے تو آپ بلا تکلف پوچھ لیجئے آج جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں وہ 11 سے لے کے 15 تک تھیں سورۃ الانبیاء کی تو ان کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے پھر خلاصہ تفسیر پھر اس کے بعد معارف و مسائل جیسے کہ ترتیب ہے معارف القرآن کی بھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں وَكَمْ قَسَمْنَا اور کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے یا تباہ کر ڈالی قسمنا کا مطلب یہاں پر یہ سین والا قسمنا نہیں ہے سین اگر آ جائے نا قسم تو وہ پھر تقسیم کے معنی میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پر صوت کے ساتھ ہے تو ایک الگ لفظ ہے قسمنا تو ترجمہ جو کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے اس میں حضرت نے لفظ استعمال کیا پیس ڈالی ٹھیک ہے نیچے دیکھیں اگر خلاصہ تفسیر میں تو اسی کے اندر جو ترجمہ استعمال کیا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے تباہ کر ڈالی لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے تو کم قسم نہ کتنی ہی کم کا ترجمہ یہاں پر کتنی ہی سے کریں گے ٹھیک ہے کہ ویسے تو کم کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی کمیت کے لیے یعنی ہاؤ مچ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا لیکن جب با محاورہ اس کا ترجمہ کریں گے کم قسم نہ تو کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے من قریتن قریہ کہتے ہیں بستی کو ٹھیک ہے مدینہ بڑے شہر کو کہتے ہیں اور قریہ ایک یعنی بستی جو کہ ٹاؤن انگریزی میں جس کو سٹی نہیں بلکہ ٹاؤن کہیں گے ٹھیک ہے سٹی جو ہے وہ مدینہ اور ٹاؤن کو اردو میں بستی کہتے ہیں اور عربی میں قریہ کہتے ہیں من قریتن یعنی بستیوں میں سے کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالی کانت ظالمتن جو کہ تھیں ظالمہ یعنی وہ بستیاں جو تھیں نا وہ بستیاں ظالم تھیں ظالم کا مطلب گناہگار ظلم کرنے والا ٹھیک ہے ظلم کا مفہوم کیا ہوتا ہے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کو دینا چاہیے وہ نہ دیا جائے یا دوسرے الفاظ میں جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دیا جائے بلکہ کچھ اور دے دیا جائے, رائٹ, کچھ اور دے دیا جائے جو اس کا حق بنتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور دے دیا جائے, یہ ظلم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا حق وہ کیا ہے بندوں کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کرتا نا, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کیا. ٹھیک ہے, تو جو دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں دیا نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت, بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطاعت دے. ٹھیک ہے, اپنی اطاعت دے اللہ تعالیٰ کو نا, تو بندے نے اس اللہ تعالیٰ کو اپنی اطاعت نہیں دی, اپنی فرما برداری نہیں دی, تو یہ ظلم ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ ظلم ہوا. صحیح ہے, یہی معاملہ, یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ہیں اور سب سے بڑے سب سے اونچے اللہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہی معاملہ نیچے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نیچے والے جو ہیں ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے, ہم جب ان کو وہ حق نہیں دیتے تو ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر اولاد کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کریں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی سکھائیں. ٹھیک ہے نا, تعلیم, کھانا پینا, یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہ اولاد کا حق بنتا ہے اور اس کی پوری کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ہمیں اس حق کا بھی خیال ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کرنا, یہ بھی اولاد کا حق ہے. اور جب ہم یہ حق اولاد کا ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر چلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کے راستے کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اولاد کا حق ادا نہیں کرنا کہلائے گا, اور یہ اولاد پر ظلم کہلائے گا, یہ اولاد پر ظلم. تو اس طریقے سے والدین اپنی اولاد کے اوپر ظالم بن جاتے ہیں, ظالم. ٹھیک ہے نا, جب اولاد کو گناہ کے راستے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں, نیکی کے راستے کے اوپر نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظلم کی یہ تعریف ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا وہ حق آپ نے نہیں دیا, اور دوسری چیز کیا آپ کو بتائی تھی کہ اس حق کو دینے کے بجائے آپ اس کو کچھ اور چیز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے اولاد کا حق کہ اس کو نیکی کی تعلیم دی جائے, نیکی کا راستہ دکھایا جائے, اس کو نیکی دکھانے کے بجائے آپ اس کو گناہ کے راستے پہ کسی ایسے اسکول میں ڈال دیا جہاں پہ اس کو ڈانس کرنا سکھایا جا رہا ہے, جہاں اس کو جو ہے وہ گندی باتیں کتابوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں, بے حیائی کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, رائٹ, جس اسکول کے اندر گناہ کا کام کیا جا رہا ہے. تو جو حق بنتا تھا اس کا وہ تو آپ نے نہیں دیا, لیکن کچھ اور دینا شروع کر دیا جو کہ اس کا حق نہیں تھا, تو یہ اولاد کے اوپر ظلم ہے. اسی طریقے سے اوپر والا, سب سے اوپر اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا حق خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اس کی اطاعت کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھیں. عقیدہ وہ کیا, کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, رائٹ, شرک کرتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرنا بلکہ اس کی جگہ کچھ بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور دینا, یعنی نعوذ باللہ پارٹنر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار دینا, تو یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق دینے کے بجائے کچھ اور دینا شروع ہو گیا آپ اس کو. ٹھیک ہے نا, شرک یہ ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم شرک. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد کیا, یہ ساری تفصیل کا مقصد کیا, کہ لفظ ظلم کو ہم سمجھ جائیں. ٹھیک ہے, کہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ ظلم جو ہے نا وہ ہر جگہ چلتا ہے, اوپر بھی چلتا ہے, نیچے بھی چلتا ہے, برابر والوں میں بھی چلتا ہے. ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کر رہے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا, بلکہ اس کی جگہ کچھ اور معاملہ کر رہے ہیں, تو یہ پڑوسی کے ساتھ ظلم ہے جو کہ ہمارے برابر والا ہے. تو ظلم کی کوئی ایک شکل نہیں ہے, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی حکمران عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو उनकी बिजली बंद कर देते हैं, उनको पानी नहीं देते या महंगाई कर देते हैं, तो जी ये बस ये जुल्म है जी, और कोई जुल्म नहीं होता, बस ये जुल्म है ना। या किसी ने जाके जो है वो कत्ल कर दिया किसी को, तो ये जुल्म किया। या किसी ने किसी की बेटी के साथ जो है वो बहुत बुरा मामला किया, है ना, किसी दामाद ने अपनी बेटी के, यानी दामाद ने जो है वो मेरी बेटी के साथ अच्छा मामला नहीं किया, तो उसने मेरी बेटी पर जुल्म किया। हमारे नजदीक जुल्म की सिर्फ ये तारीफ है, हम इससे ज्यादा जुल्म समझते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जुल्म एक बहुत ही उमूमी कॉन्सेप्ट है, और यहां पर जिस जुल्म की बात हो रही है ना, कानत जालिमतन, तो ये उसी वक्त समझ में आएगा जब हमें जुल्म का मतलब समझ में आएगा। वरना हम समझते रहेंगे कि अच्छा ये बस्ती वाले लगता है दूसरों के ऊपर हमला कर दिया करते होंगे और उनको मार दिया करते होंगे या उनका माल छीन लिया करते होंगे, इस वजह से जालिम कहा इनको अल्लाह ताला ने। नहीं, सिर्फ इस वजह से जालिम नहीं बनता कोई, बल्कि अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो, किसी भी मखलूक को उसका हक ना दिया जाए, तो वो जुल्म ही बनता है, ठीक है। तो इस बस्ती वाले, जिन बस्ती वालों का यहाँ पे जिक्र है, ये हर किस्म के जुल्म करते थे, ठीक है, और इसके अंदर इतना आगे बढ़ गए थे कि अल्लाह ताला ने इनको पीस दिया। ये दूसरों को पीसते थे, ये दूसरों को पीसते थे, इसके बदले में अल्लाह ताला ने इनको पीस दिया, ठीक है। तो कम कसमना मिन क़रियतिन कानत ग़ालिमा, ठीक है, कितनी ही बस्तियां हमने पीस डाली, वो गुनाहगार थी, वो जालिम थी, ठीक है। फिर क्या किया, व अनशअना बादहा कौमन आखरीन। अनशा, अनशा युनशु, इंशान का मतलब होता है शुरू करना, खड़ा कर देना, उठाना, यानी इब्तिदा कर देना, किसी चीज की इब्तिदा कर देना, किसी चीज को शुरू कर देना, अनशा, ठीक है। तो यहां पर अनशा ना, हमने शुरू कर दी, हमने इब्तिदा कर दी, ठीक है। बादहा, इसके बाद, इसके बाद किसके बाद, जिन बस्तियों को हमने पीस दिया ना, तो जब किसी बस्ती को पीस देते थे तो फिर और बस्तियां हम खड़ा कर देते थे, हम दुनिया के अंदर चला देते थे, ठीक है। तो इनके बाद हमने और बस्तियां चला दी, कौमन आखरी, ठीक है, जो कि यानी कॉमन, कॉमन का मतलब तो यानी कोई कौम, कोई कोई यानी लोग, ठीक है। आखरीन, आखर का जो लफ्ज होता है इसका मतलब होता है अनदर, एक और, ठीक है ना, और आखरीन यानी और, दूसरी, ठीक है। आखिर, लास्ट, जैसे उर्दू में कहते हैं ना आखिरी, वो आखिरी नहीं होता, वो आखिरी होता है खा के नीचे जेर, तो आखिरी का मतलब होता है बिल्कुल आखिर में आने वाली चीज, लास्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और आखर का मतलब होता है अनदर, एक और, ठीक है। तो हमने उनके बाद और बस्तियां खड़ी कर दी, उन बस्तियों के बाद और कौमें खड़ी कर दी, ठीक है। यानी कोई कौम जब हम तबाह कर देते हैं ना, तो ये नहीं होता कि बस अब हमारा सिलसिला खत्म हो गया, अब हमारा काम ठप हो गया, नहीं, एक खत्म करी दूसरी, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर जो लफ्ज है अनशा, अनशअना, ठीक है, तो इस लफ्ज की वजह से ना बड़े लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो क्या कि इनशा अल्लाह का जो लफ्ज है ना, इनशा अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, ठीक है, तो उसको जो है ना वो कुछ नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, ठीक है, ये मुहावरा सुना होगा आपने। तो नीम मुल्ला खतरा ईमान का मतलब क्या होता है कि दीन का थोड़ा सा इल्म हासिल किया और उसके बाद फिर फतवे देने शुरू कर दिए, दीन का थोड़ा सा इल्म हासिल किया और फतवे देने शुरू कर दिए कि ये चीज जायज नहीं है, ये चीज हराम है, ये चीज अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी है, वगैरह वगैरह, है ना। आपने थोड़ा सा इल्म हासिल किया, आपको भी पता कुछ नहीं है और आप इस किस्म के फतवे देना शुरू हो गए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा इल्म हासिल करके फिर उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि अगर इंशा अल्लाह को जो है ना नून और शीन को जोड़ करके लिखेंगे ना, तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला को शुरू किया गया, अल्लाह ताला को शुरू किया गया, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने फतवा क्या जारी किया कि इंशा अल्लाह को जोड़ के नहीं लिखो, इंशा अल्लाह को अलग अलग लिखो, इनको अलग लिखो, शीन अलिफ और हमजा को अलग लिखो, सुना है आपने, आपके पास भी इस किस्म का शायद व्हाट्सएप मैसेज आया होगा। ये काफी पहले की बात है, 1-2 साल पहले ये वायरल चल रहा था और माशाल्लाह काफी लोगों ने इसको पढ़ करके इसके ऊपर अमल भी किया और इंशाअल्लाह को अलग अलग लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लिखते हैं हमजा नून अलग लिखते हैं और शीन अलिफ हमजा अलग लिखते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह लिखना गलत है, अलग लिखना गलत है, मैं ये आजिज ये नहीं कह रहा, लेकिन ये आजिज कह रहा है कि साथ जोड़ करके लिखना वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, इस किस्म के फतवे जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं अपने तौर पर, तो ये करना गलत है, क्योंकि एक चीज जिसके अंदर कोई गलती नहीं है आप उसको गलती कह रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी एक गलत तफहीम कर रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह जोड़ के लिखने का मतलब ये अल्लाह ताला को शुरू किया गया, हालांकि इसका दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अच्छा चने जी हम इसके पीछे क्यों पड़ गए, क्या जरूरत है? ठीक है, उन्होंने कहा उनकी समझ थी, उन्होंने कहा कि ये अलग अलग लिखना है, तो अलग अलग लिखना जो है वो गलत भी नहीं है, तो फिर आप क्यों इस बात के बारे में बात कर रहे हैं? क्या जरूरत है आपको इस बारे में बात करने की? है जरूरत, इस बारे में बात करने की जरूरत है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे अकाबिर उलमाए कराम की किताबें हैं और उनका जो लिखने का अंदाज है ना, वो जोड़ करके लिखने का है, नून और शीन को जोड़ करके लिखते हैं। ठीक है ना, अब जो नए नए दीन पढ़े हुए लोग, ठीक है, जिन्होंने के इस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ करके उसके ऊपर यकीन कर लिया कि जोड़ के लिखेंगे तो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा, कुफर हो जाएगा, अब उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया कि जी जोड़ के लिखना कुफर है, क्योंकि इसका मतलब है अल्लाह ताला को शुरू किया गया। अब जब वो अकाबरीन उलमाए कराम की किताबों के अंदर जब ये पढ़ेंगे कि जोड़ के लिखा हुआ है उन्होंने, तो कहेंगे ये मौलवी साहब कुफर कर रहे हैं, या तो ये समझेंगे कि मौलवी साहब कुफर कर रहे हैं, या वो ये समझेंगे कि मौलवी साहब तो जाहिल है, मौलवी साहब को तो आते ही नहीं है कुछ, इतनी बुनियादी बात इनको नहीं पता थी और इन्होंने इस किस्म से गलत तरीके से लिखकर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से कि उनका एतमाद उलमा पर से खत्म हो जाएगा या मुतासर हो जाएगा उनका एतमाद। ठीक है ना, फिर वही पुरानी वाली सोच जो दुनियादारों की पुरानी सोच होती है कि इन मौलवियों को तो कुछ नहीं आता जाता, वही सोच वापस आ जाएगी उनके अंदर कि वाकई इन मौलवियों को तो कुछ नहीं आता जाता, या इतनी मेजर गलती करते हैं अपनी किताब के अंदर, है ना, और इस बद एतमादी की वजह से फिर इनकी सारी चीजें मुतासर होंगी, हर चीज को फिर ये डाउट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ना इस किस्म की बेवकूफी की बातें आपके पास व्हाट्सएप के अंदर वायरल मैसेजेस के अंदर आती हैं, उसको बिलीव नहीं कर लिया करें। फस अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, ठीक है ना, तुम्हें चीज का पता नहीं होता उलमा से पूछा करो, पूछ लिया करो, खुद से उसके ऊपर बिलीव करके फिर भागना दौड़ना नहीं करो। तो इनशा अल्लाह जो है ना, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट लफ्ज है, और अनशा अल्लाह ये इसका मतलब बनता है कि अल्लाह ताला को शुरू किया गया, अनशा अल्लाह। ठीक है, तो उस पढ़ने से वो कुफर बनता है, लिखने से कुफर नहीं बनता, लिख करके लिखने में तो आप जोड़ करके चीजों को लिखते हैं, कम अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, कम जगह इस्तेमाल करने के लिए आप जोड़ करके चीजों को लिखते हैं, जैसे अल्लाह अल्लाह तअदलू। ठीक है ना, अब अल्लाह जो है वो लिखने में हमजा लाम अलिफ इस तरह से आप लिखेंगे अल्लाह, लेकिन असल में वो क्या है, वो है अन ला। ठीक है, तो पढ़ने यानी कुरान जो है ना, उसको पढ़ना सही आना चाहिए, उसका मफहूम सही आना चाहिए, लिखना एक लिखने से कंफ्यूज नहीं हो सकते, अगर आप पढ़ सही रहे हैं तो मफहूम गलत नहीं होता, अगर आप लिख जैसे भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना सही होना चाहिए, अगर लिखने से आपका पढ़ना मुतासिर ना होता हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, वैसे भी अनशा युनशु एक अलग चीज होती है और ये इनशा अल्लाह ये एक अलग चीज होती है, बहरहाल खामखा इस तरह की चीजों को इशू बना देना। इसी तरह की एक दो और मिसालें भी आती हैं, मिसाल के तौर पर इसी तरह के लोगों ने एक और चीज उड़ाई कि जी अल्लाह मियाँ कहना जो है ना वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, अल्लाह मियाँ कहना, क्योंकि हम शौहर को मियाँ कहते हैं तो अल्लाह को भी मियाँ नहीं कहा करें, मतलब ये लगता है ये सोच बैठे सोचते रहते हैं कहाँ एतराज करें, कहाँ कोई नई चीज निकालें, ठीक है ना। और शैतान जो है वो इस किस्म का आइडियाज डालते रहते हैं कि भाई अल्लाह मियाँ कहना जो है ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी। तो भाई मियाँ का जो लफ्ज है वो आप शोहर के लिए अगर कहती हैं तो उससे वो अल्लाह ताला के लिए तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। इज्जत के लिए किसी को अगर आप मियाँ कह रहे हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो, शोहर के लिए भी मियाँ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, किसी के लिए भी मियाँ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्लाह ताला के साथ मियाँ का लफ्ज इस्तेमाल कर देना जो है वो नऊज बिल्ला अल्लाह ताला को कुछ शोहर की तरह से गर्दानना नहीं बन जाएगा। अब ये भी एक अल्लाह की शान में गुस्ताखी स्टार्ट कर दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बिलीव करके बैठ गए, अल्लाह मियाँ ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है जी। जजाक लतीफ सी चीज यही थी जो भी असल में मर्दों की क्लास में बात हुई है परसों ही, ठीक है। उसी तरीके से हलीम, वो हलीम तो खाने की चीज होती है जी, अच्छा नहीं वो तो अल्लाह ताला के नाम में से हलीम भी है, तो इस वजह से हलीम को जो है वो दलीम कहना शुरू करो भाई, हलीम नहीं कहो उसको बल्कि उसको दलीम कहो, इसलिए कि अल्लाह का नाम जो है वो हलीम है, तो खाने की चीज का नाम हलीम नहीं होना चाहिए, उसका नाम दलीम। तो माशाल्लाह लोग इसके ऊपर अमल करना, यानी हम फराइज के ऊपर अमल करें ना करें, हम गुनाहों से बचने के हुक्म के ऊपर अमल करें ना करें, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर और इस किस्म के सोशल मीडिया पोस्टों के ऊपर इतना हमारा अमल होता है, इतना अमल होता है कि हकीकत में लोग जो है वो हलीम को दलीम कहना शुरू हो गए। तो ये यानी ये बचकाने की हरकतें, इसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उलमा से पूछ लेना चाहिए इन तरह की बातों के ऊपर, फौरन से यानी बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सनद के, उनको हकीकत मान करके उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, ठीक है। हलीम अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन अल्लाह ताला के नाम के अलावा हलीम का लफ्ज बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी बंदे को भी आप हलीम कह सकते, भाई ये कितने हलीम हैं, ये कितने बुर्दबार हैं, राइट। करीम का लफ्ज भी अल्लाह ताला के नाम में से करीम भी है, लेकिन करीम का लफ्ज जो है वो रमजान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रसूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी आम बंदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब ये करीम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं करो किसी चीज के लिए, क्योंकि करीम है वो कल को जो है वो जो क्रीम मिलती है ना बाजार के अंदर, उसको भी फिर कोई दलीम करना शुरू कर देंगे, है ना। यानी जो असल मसले हैं ना, उन असल मसलों से शैतान इस तरीके से तवज्जो हटाता है और नए नए मसले निकाल करके नए नए इश्यूज के ऊपर जो है ना वो इंसान की तवज्जो वहां पे डाइवर्ट कर देता है, और असल मसलों से तवज्जो हट गई। और ना सिर्फ ये कि तवज्जो हट गई, बल्कि दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या कि जब उलमा मशाइख वो जब ये इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, तो फौरन ये जो साहब हैं, अच्छा गुस्ताख, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख खुदा है, ये अल्लाह के नाम को जो है वो खाने की चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस किस्म के शेख साहब हैं, ये किस किस्म के आलिम साहब हैं, देख रहे हैं। खाली ये नहीं कि तवज्जो डाइवर्ट हो रही है, बल्कि बदगुमानी भी पैदा हो रही है, और बदगुमानी की वजह से बद एतमादी होती है, और बद एतमादी के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, बद एतमादी कुछ बाकी नहीं रहता उसके बाद, ठीक है। पिछली क्लास में पढ़ा था ना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो उससे शरीयत का क्या मसला बनता है कि जाहिल आदमी, जो पिछले पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि जाहिल आदमी जिसको अहकाम शरीयत मालूम ना हो, उस पर आलिम की तकलीद वाजिब है, आलिम की तकलीद वाजिब है। तो इसकी मैं आपको बताया था ना कि तकलीद का क्या मतलब होता है, आप में से कोई बताए ताकि थोड़ा क्विज भी हो जाए, तकलीद का मफहूम क्या होता है, तकलीद का मतलब क्या होता है, आलिम की तकलीद वाजिब है, क्या बताया था तकलीद की तारीफ, किसी को याद है? माशाल्लाह आलिमात हैं वो थोड़ी देर से ठहर जाए, आपको मुझे मालूम है आपको पता है, लेकिन जो दूसरी खवातीन हैं, नई खवातीन का मसूम, तो वो अगर जवाब देने की कोशिश करें कि तकलीद की क्या तारीफ बताई थी। टू फॉलो विदाउट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग को थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर सकती हैं, बिकॉज क्वेश्चनिंग के लफ्ज से और भी चीजें ध्यान में आ सकती हैं। इन्होंने लिखा कि किसी आलिम से सवाल करने के बाद उस पर बिना सवाल किए इतराज किए अमल करना, नहीं ये बिना सवाल किए इतराज किए, इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या बताया था, क्योंकि एक एक लफ्ज बताया था, वो लफ्ज बड़ा अहम है, वो जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो उस वक्त तक तारीफ पूरी नहीं होगी। अगरचे के इतना अंदाजा हो गया कि हाँ आपको कुछ याद है, आपने कुछ लिख लिया था, ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल तारीफ नहीं बनेगी। जैसा आपने बोला, प्रूफ मांगे बगैर, प्रूफ मांगे बगैर, दलील मांगे बगैर, ठीक है, ये है तकलीद की तारीफ। कि किसी आलिम से आपने मसला पूछा कि जी मुझे फलाने जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, फलानी चीज जो है वो हलाल है या हराम है, उन्होंने आपको जवाब दे दिया कि जी ये हलाल है। अब आपने उनसे प्रूफ नहीं मांगा, दलील नहीं मांगी कि जी मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि ये कैसे हलाल है, तब मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है। तो प्रूफ ना मांगे बगैर एतमाद कर लेना आलिम की बात के ऊपर, इसको कहते हैं तकलीद, इसको तकलीद कहते हैं, ठीक है। अब तारीफ तो हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास के अंदर, तकलीद की तारीफ भी पढ़ ली और शरीयत का मसला भी पढ़ लिया कि जाहिल इंसान के ऊपर आलिम की तकलीद वाजिब है। लेकिन अब इसमें जो अहम नुक्ता है, सबसे अहम नुक्ता, वो ये क्या क्या है वो, कि भाई कोई जाहिल इंसान आलिम पर आलिम की तकलीद कब करेगा, आलिम की तकलीद क्यों करेगा। वो इसी वक्त करेगा ना, उसी उसी वक्त करेगा ना, कि जब उसको आलिम के ऊपर एतमाद होगा कि ये मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये मुझे गलत मसला नहीं बताएंगे, इनके पास इतना इल्म है कि ये मुझे सही सही जवाब दे सकते हैं, ये एतमाद होगा आलिम के ऊपर, तभी जाहिल आलिम की तकलीद करेगा ना। और अगर एतमाद नहीं है, शक है कि भाई पता नहीं इनको सही पता भी है कि नहीं पता, सच्चे भी हैं कि झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे, मुझे गलत मसला बता देंगे, जब एतमाद नहीं हुआ तो फिर तो तकलीद नहीं कर सकता ना, फिर तकलीद क्यों करेगा, फिर तो यही कहेगा ना आलिम साहब पहले प्रूफ करें फिर मैं आपकी बात मानूंगा, ये तो तकलीद नहीं कर सकता ना, बदएतमादी के साथ तो कोई तकलीद नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देते हैं, तो अगर आपका डॉक्टर के पास डॉक्टर के ऊपर एतमाद ना हो तो आप वो दवा घर पे ला करके खाना शुरू कर देंगे। हमें तो, मैं तो अपनी पर्सनल जो हमारी प्रैक्टिस है वो गई वो ये है कि हमें डॉक्टरों पर एतमाद नहीं है, तो हम तो अपने भाई साहब पे एतमाद करते हैं जो कि डॉक्टर हैं, हम अपने भाई साहब से पूछते हैं कि ये खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो बता देते हैं तो फिर हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें भाई के ऊपर एतमाद है। बाकी जो क्लिनिक के अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे होते हैं, हमें तो उन पर एतमाद नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही है, आपके भी भाई डॉक्टर हैं, अब्बू डॉक्टर हैं या बेटा डॉक्टर है, अगर नहीं है तो फिर तो वही जो क्लिनिक में बैठे होते हैं उनके ऊपर एतमाद करते हैं ना, उनसे दलील तो नहीं पूछते कि जी फलाने दवा के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उस इंग्रेडिएंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या हैं क्या नहीं हैं, और कितने लोगों को उससे फायदा हुआ और कितने लोगों को उससे फायदा नहीं हुआ, और किस मेडिकल बोर्ड ने जो है वो इस दवा को अप्रूव किया है और किस मेडिकल बोर्ड ने इस दवा को अप्रूव नहीं किया है, ये सारी चीजें आप मुझे बताएं फिर मैं इस दवा को इस्तेमाल करूंगी, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, आपको तो एतमाद होता है ना डॉक्टर के ऊपर, ठीक है, तो तभी तो आप डॉक्टर की बात की तकलीद करके आप दवा खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एतमाद की वजह से ना, अगर एतमाद नहीं है तो फिर तो तकलीद नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो इंशा अल्लाह वाला आपके सामने मसला बयान किया है, हलीम वाला मसला बयान किया है, और वो अल्लाह मियाँ वाला मसला बयान किया है ना, ये सारा इसलिए है कि उलमा पर बद एतमादी के ये तरीके हैं, उल्टे सीधी बातें, जिससे कि उलमा पर एतमाद। अब ये आप मारिफुल कुरान पढ़ रही हैं, मारिफुल कुरान के अंदर इंशाअल्लाह कई जगह पे लिखा हुआ है और वो जोड़ करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इंशाअल्लाह को अगर आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी समझेंगी तो मारिफुल कुरान की क्या फिर आपके सामने इज्जत रह जाएगी, राइट। मारिफुल कुरान के ऊपर तो फिर शक पड़ जाएगा ना, शैतान डालेगा कि देखो तो मारिफुल कुरान के अंदर जो है उन्होंने इंशाअल्लाह लिखा हुआ है, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ये बातें अहम है, इसी वजह से आपके सामने इतना सारा वक्त लगाया है इस बात को समझाने में, ठीक है। तो आयत में फरमाया था वह अनशअना बादहा कौमन आखरीन, और उन बस्तियों को हलाक करने के बाद हमने दूसरी बस्तियां बहुत सारी पैदा कर दी। फलम्मा अहस्सु बअसना इदा हुम मिन्हा यरकुदून, फलम्मा पस जब, लम्मा का तर्जुमा जब से करते हैं और फा का तर्जुमा फिर से, یعنی دین اس کے بعد، تو فلما پھر احسو بأسنا، انہوں نے آہٹ پائی، یعنی انہوں نے ان کو حس لگ گئی، ان کو جو ہے وہ آہٹ مل گئی، جیسے ان کی جو پانچ حواس خمسہ ہوتے ہیں، حسیں ہوتی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چھونے کی، رائٹ، یہ جو پانچ حصے ہوتی ہیں، تو ان پانچ حصوں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا، ٹھیک ہے، یا ان کے بدن کے اوپر گرمی ورمی کے آثار محسوس ہوئے، جس کو ٹچ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے احسو بأسنا، ہماری آفت، بأس کہتے ہیں برائی، آفت کو، اور بأسنا ہماری آفت، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی آفت، جب ان کو پرسیو ہونے لگی، اذا ہم، اچانک وہ، ٹھیک ہے، اذا کا ترجمہ کرتے ہیں جب سے، جب، اور جب اذا کے بعد کوئی اسم آ جائے نا، جیسے کہ ہم ایک اسم ہے، ایکچولی ایک پروناؤن ہے، ناؤن نہیں ہے، پروناؤن ہے. تو اذا کے بعد جب پروناؤن آ جائے یا ناؤن آ جائے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اچانک سے، ایک دم سے، ٹھیک ہے. تو اذا ہم منہا یرکضون، تو ایک دم سے وہ لوگ جو ہے نا، وہ منہا، وہاں سے، یعنی اپنی بستی سے، یرکضون، ٹھیک ہے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، ایڑیاں ایڑ کرنے لگے. ایڑ کرنے کا مطلب، یہ تو بہت کلاسیکل پرانی اردو ہے، کیونکہ آج سے 200 سال پہلے کا ترجمہ ہے تقریباً یہ، ٹھیک ہے. تو یرکضون کا مطلب بھاگنا شروع، جیسے گھوڑے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے، تو گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جب گھوڑے کو بھگانا ہوتا ہے نا، تو ایڑی مارتے ہیں، رائٹ، اپنے پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے نا، وہ گھوڑے کے اوپر زور سے مارتے ہیں، تب گھوڑا بھاگنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی پھر اردو میں ایک محاورہ بن گیا کہ ایڑی ماری کا مطلب بھاگنا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے رکدا یرکضو، بنتا ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، ٹھیک ہے. لا ترکضو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بھاگو مت، ایڑ مت کرو، یعنی بھاگنے کی کوشش مت کرو. ورجعو الى ما اترفتم فیہ، واپس آ جاؤ. ارجعو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ. ما اترفتم فیہ، اس بستی کے اندر جس میں تم نے عیش کیا تھا، یعنی اب اس بستی سے بھاگنے، اس بستی پہ ہم نے اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے، عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، اب تم اس بستی سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ لوٹ آؤ. یعنی وہ کوئی فزیکلی بھاگ پاتے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نا گویا کہ ان کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، تم بھاگ نہیں سکو گے، ٹھیک ہے. تو ما اترف تم فی، اطرف یترف، یعنی عیش کیا تم نے، ٹھیک ہے، جس کے اندر تمہارا سامان عیش تھا، اس کے اندر واپس آ جاؤ. ومساکنکم، اور اپنے مساکن کی طرف واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے. ارجعو الی مساکنکم، واپس آ جاؤ اپنے مساکن کی طرف. مساکن مسکن کی جمع ہے، اور مسکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے، مکان کے لیے، جہاں پر انسان سکون حاصل کرتا ہے، باہر کے شور و شغب سے، باہر کی اذیتوں سے، گھر کے اندر سکون ملنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے. اگر گھر سکون کی جگہ نہ ہو، تو پھر وہ گھر کہلانے کے لائق نہیں ہے. اسی وجہ سے عربی کے اندر گھر کے لیے مسکن کا لفظ بھی استعمال ہوا، بیت کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور مسکن کا لفظ بھی استعمال ہوا. مساکن مسکن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو واپس آ جاؤ اپنے مساکنکم کی طرف، ٹھیک ہے. لعلکم تسالون، شاید کوئی تم کو پوچھے، یعنی کوئی تم سے سوال کرے، ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ تم سے شاید لوگ پوچھیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، یعنی ایک یہ ورچوئل انداز میں بات ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں نہ تو وہ بھاگ سکتے تھے، اور نہ بھاگنے کے اوپر ان کو واپس لوٹنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا تھا، اور نہ کسی نے ان سے کوئی سوال جواب کرنا ہے ان کے گھر کے اندر ان کے برباد ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ کیا کہتے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی، ٹھیک ہے، کہ جی वो खौफ दिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग तो बर्बाद हो गए, लेकिन उनका वाकया जो है ये कुफार मक्का को सुनाया जा रहा है ना। ये जो आयात नाजिल हो रही है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ये आयात किन को सुनाने के लिए नाजिल हो रही है? मक्का मुकरमा के कुफार को। तो इनके दिलों के अंदर उन बस्तियों के अजाब के वाक़े को हौलनाक बना बना करके पेश किया जा रहा है ताकि वो डरें, इस अजाब से डरें। और वाकई जिनकी यानी जो हिदायत पाते थे कुरान की आयात सुन करके, वो इन आयात को सुन करके डर जाते थे, उनका दिल दहल जाता था और वो इस्लाम कबूल कर लेते थे इन आयात को सुन करके। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने डराने के लिए उनको इस तरह की बस्तियों वगैरह के वाकयात बताए। ठीक है, वरना वो जो बस्तियां थी उनके साथ ये सारी चीजें नहीं हो रही थी कि वो भाग रहे थे, फिर उनको वापस लाया जा रहा था, फिर उसके बाद उनसे सवाल करने का कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, वो सब तो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो ला तरकुदू, नहीं दौड़ो, नहीं भागो, वर्जुउ इला मा उतरफ तुम फीही, वापस आ जाओ जहां पे तुम ऐश किया करते हो, व मसाकिनकुम, और अपने घरों के अंदर वापस आ जाओ, लअल्लकुम तुसअलून, शायद कि तुमसे कोई पूछे आकर के कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कोई सवाल करे तुमसे। कालू, कहने लगे, या वैलना, ओ हमारी बर्बादी, ओ हमारी कमबख्ती, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जुल्म करने वालों में से थे, बेशक हम ही जालिम थे, यानी हमने गुनाह किए थे। ठीक है, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, इट वॉज टू लेट, जब अजाब आ चुका, जब मौत नजर आनी शुरू हो गई, अब तौबा करने का दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, जिंदगी में ये बात कर लेते जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, है ना, ए अल्लाह आप के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सुभानका आप पाक हैं, क्या मतलब आप गलतियों से पाक हैं, आप मिसमेजरमेंट से, मिसकैलकुलेशन से पाक हैं, आप गलत फैसले करने से पाक हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, आपने कोई गलत फैसला नहीं किया कि मैं मछली के पेट में पहुंच गया, आपने नाउज़ बिल्ला गलत जजमेंट करी मेरे बारे में, मेरा तो कोई बुरा इरादा नहीं था, आपने मेरी मेरी नीयत को गलत इंटरप्रेट किया और मुझे सजा दिलवा दी, मछली के पेट में पहुंचा दिया, हालांकि आई डिड नॉट डिजर्व टू बी हियर, आई डिड नॉट डिजर्व टू बी हियर। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, हम ये कहते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, हम उस वक्त ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका कहने की बजाय क्या कहते हैं, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, आई डिड नॉट डिजर्व दिस, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, हम ये कहते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल इसका बरअक्स कह रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, योर डिसीशन फॉर मी वॉज द राइट डिसीशन, आई डिजर्वड इट, आई इनडीड डिजर्वड इट। ठीक है, उसके बाद क्या फरमाते हैं, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, क्योंकि वो तो एक फर्द थे ना, तो उन्होंने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, इन्नी कुंतु, राइट, यहां पर बस्ती वालों की बात हो रही है, तो बस्ती वाले जो थे वो तो प्लूरल थे, राइट, प्लूरल थे, तो वो प्लूरल का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, इन्नी कुंतु वाहिद का सीगा है, इन्ना कुन्ना ये जमा का सीगा है, लेकिन फर्क इन दोनों में क्या है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में वो कहा और इन्होंने मौत देखने के बाद ये कहा। ठीक है, तो हम भी मौत देखने के बाद तो सभी ये कहते हैं, काफिर भी कहते हैं, गुनाहगार मुसलमान तो क्या, काफिर तक ये बात कहता है, मौत जब नजर आनी शुरू हो जाती है, जिंदगी में कौन कहता है, ईमान वाला कहता है। तो अब हम अपनी जिंदगी में देख लें कि हम क्या मौत तक इसको डिले कर रहे हैं अपनी गलतियों को एडमिट करना, या हम मोमिनीन की तरह दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अपने अपने आप को गुनहगार तस्लीम कर लें, मान लें, इकरार कर लें। इकरारी मुजरिम को तो दुनिया वाले माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला कैसे माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम इकरार करें तो ना, हम अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी मिसकैलकुलेशंस का, अपने जुल्म का, जो हम हर एक के साथ करते फिर रहे हैं, बड़ों के साथ भी, बराबर वालों के साथ भी, छोटों के साथ भी, हम उसका इकरार तो करें ना, इन्ना कुन्ना मिनज़्ज़ालिमीन, अपने लिए तो कहें ना कम अज़ कम। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर मौत देखने के बाद क्या कहा, कालू या वैलना, हाय हमारी बर्बादी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम ही थे ज़ालिम। फमा ज़ालत तिल्क दावाहुम, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मा ज़ालत, फिर मा ज़ालत यानी नहीं ज़ायल हुआ इन पर से, तिल्क दावाहुम, उनकी फरियाद, उनकी ये, उनका ये दावा या उनका उनका ये पुकारना, दावा यहां पर मुराद उनका पुकारना, ठीक है ना, उनका ये शोर मचाना, हत्ता जालनाहुम, हत्ता के हमने बना दिया उनको, जालना बना दिया हमने, हम उनको, हत्ता के हमने उनको बना दिया, हसीदन, हसीदन कटी हुई खेती, जो जो जमीन के अंदर पूरा खेत लगा हुआ होता है ना, जब उसको दरांती से या जो हार्वेस्टर होता है उससे काट देते हैं ना बिल्कुल, तो उसको कहते हैं हसीदन, ठीक है, तो हत्ता कि हमने उनको हसीदन बना दिया, खामिदीन, बुझे हुए थे, ठीक है, यानी उनकी जिंदगी की रमक खत्म हो गई, बुझ गए, लेटे हुए थे, मरे हुए, ठीक है। तो अल्लाह ताला का अजाब जब आ जाता है तो फिर ऐसे ऐसे बस्तियां तबाह हो जाती हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस तरह की बस्तियों का यहाँ पे जिक्र किया। खुलासे तफसीर जल्दी से पढ़ लेते हैं, वैसे तो काफी तफसीर हो चुकी है। तो फरमाया कि और हमने बहुत सी बस्तियां जिनके रहने वाले जालिम यानी काफिर थे तबाह कर डाली। अब जो जाहिर है अपने जुल्म में इस दर्जे तक बढ़ जाता है ना कि अल्लाह ताला का अजाब उसके ऊपर आ जाता है, तो फिर उसका ईमान भी खत्म ही हो चुका होता है, तो इस वजह से वो काफिर ही होता है, ठीक है। तो इसी वजह से तफसीर में ब्रैकेट्स में इसको यानी काफिर करार यानी लिख दिया, तबाह कर डाली और उनके बाद दूसरी कौम पैदा कर दी। तो जब इन जालिमों ने हमारा अजाब आता देखा तो इस बस्ती से भागना शुरू किया ताकि अजाब से बच जाएं। हक तआला इरशाद फरमाते हैं कि भागो मत और अपने सामान ऐश और अपने मकानात की तरफ वापस चलो, शायद तुमसे कोई पूछे पाछे कि तुम पर क्या गुजरी। मकसूद इससे बतौर तारीद कि उनकी अहमकाना जसारत पर तंबीह है कि जिस सामान और मकान पर तुमको नाज था अब ना वो सामान रहा ना मकान ना किसी दोस्त का निशान रहा, क्योंकि जब कोई तकलीफ में होता है तो उसका दोस्त उसका हमदर्दी आकर के उसे पूछता है कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों इतनी तकलीफ में तुम मुब्तला हो, लेकिन इनका कोई दोस्त हमदर्द नहीं होगा जो कि आकर के इनसे पूछे, ठीक है। तो बतौर तारीज यानी इनको अर्ज करना इनके इस अंदाज से, इनको उनको तंबीह कर रहे हैं बेसिकली, बतौर तंबीह आप आसानी से समझ लें, इनको इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो लोग नुजूल अजाब के वक्त कहने लगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम लोग जालिम थे, उनका यही शोर व गुल रहा यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा नीस्त तो नाबूद कर दिया जिस तरह खेती कट गई हो या आग बुझ गई हो। तो ये तो हो गई इसके खुलासे तफसीर, मारूफ मसाइल मुख्तसरी हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं आज की क्लास के अंदर ही, कि इन आयात में जिन बस्तियों के तबाह करने का जिक्र है, बाज़ मुफस्सरीन ने उनको यमन की बस्तियां हुदूरा और कुलाबा करार दिया है, यानी दो बस्तियां यमन के अंदर किताबों के अंदर लिखी हुई हैं जिनका नाम हुदूरा और कुलाबा था, जहां अल्लाह ताला ने अपना एक रसूल भेजा था जिसके नाम में रिवायात मुख्तलिफ हैं, यानी मुख्तलिफ रिवायात से सहाबा से मनकूल है या इसराइली रिवायात हैं जो कि बनी इसराइल के लोगों ने यहूदियों ने मुसलमानों को बाद में बताएं कि हमारी किताबों में ये सब लिखा हुआ है, उनको बनी इसराइली यानी उनको इसराइली रिवायात कहा जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर मुख्तलिफ नाम आए हैं इस रसूल के जो कि इन बस्तियों की तरफ अल्लाह ताला ने भेजे थे। बाज में मूसा बिन मीशा, ये मूसा बिन इमरान नहीं है जिनका जिक्र कुरान में जगह जगह पर है, मूसा बिन मीशा ये कोई और नबी है जिनका नाम भी मूसा था, और बाज में शुएब जिक्र किया गया है, ठीक है। मूसा बिन मीशा से तो हर बंदा समझ जाएगा कि ये वो वाले मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, कोहे तूर वाले, राइट, लेकिन शुएब जिक्र किया गया तो शुएब का इतना, शुएब अलैहिस्सलाम का इतना ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से उसको लिख दिया कि अगर उनका नाम शुएब है तो वो मदियन वाले शुएब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और है, ठीक है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जिन शुएब अलैहिस्सलाम के घर गए थे मदियन में और उनकी बेटी से फिर इनकी शादी हुई थी, ये वो वाले शुएब अलैहिस्सलाम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो मदियन में ही रहे और वहीं पर सारा मामला हुआ उनका, वो यमन जा करके नहीं बसे थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी और शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अगर वही अगर शुएब अलैहिस्सलाम नाम के नबी वहां वहां गए थे, उन लोगों ने अल्लाह के रसूल को कत्ल कर डाला, अल्लाह ताला ने उनको एक काफिर बादशाह बुख्त नसर के हाथों तबाह कराया। ठीक है, तो इनकी तबाही जो है ना वो आसमान से पत्थर बरसा करके या जमीन उलट करके या दूसरी शक्ल इस तरह नहीं आई थी, बल्कि बुख्त नसर एक बादशाह था, उसने इनके ऊपर हमला किया, उनको तबाह किया। बुख्त नसर को इन पर मुसल्लत कर दिया, जैसा कि बनी इसराइल ने जब फलस्तीन में बेराही इख्तियार की तो उन पर भी बुख्त नसर को मुसल्लत करके सजा दी गई थी। मगर साफ बात यह है कि कुरान ने किसी खास बस्ती को मुअय्यन नहीं किया, इसलिए आम ही रखा जाए, उसमें ये यमन की बस्तियां भी दाखिल होंगी, वल्लाहु आलम। ठीक है, तो साफ बात से मतलब ये कि कुछ मुफस्सरीन ने अगरचे के लिखा है कि यहाँ पे जो बस्तियां मुराद हैं वो वाली बस्तियां मुराद हैं, लेकिन यानी ये कोई 100% कन्फर्म बातें नहीं है, तो इस वजह से ना उमूमी तौर पर हर बस्ती यहाँ पे मुराद हो सकती है जिसने जिसके रहने वालों ने जुल्म किया और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाज़ाब नाज़िल किया। बुख्त नसर अलमन इराक का बादशाह था और उसने बहुत ज्यादा बस्तियों को तबाह किया था, बैतुल मुकद्दस को भी इसने बुरी तरीके से तबाह किया था। अच्छा, आगे की आयत भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, वमा खलक़नास्समा वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन। साथ साथ तर्जुमा कर लेते हैं कि वमा खलक़ना, नहीं तख्लीक किया हमने, अस्समा आसमान को, वल अर्ज़ा और जमीन को, वमा बैनहुमा और जो दरमियान है उन दोनों के, लाइबीन खेलते हुए, लाइब खेलने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो लाइबीन का मतलब कि हमने खेल कूद में नहीं तख्लीक किया आसमान और जमीन को, हमने खेल कूद में तख्लीक नहीं किया, यानी जैसे कहते हैं खेलते खेलते कोई चीज बना ली है ना, तो ऐसे नहीं किया हमने। ठीक है, अब इसमें पहला जो माँ है वो है माए नाफिया, नफी के लिए कि माँ खलकना, हमने नहीं तख्लीक किया, और दूसरा जो माँ है वो है माए मौसूला, जिसका तर्जुमा जो बनता है, जो कुछ या जो। ठीक है, तो हमने नहीं तख्लीक किया आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा और जो उन दोनों के बैन है, बैन का मतलब माँ बैन, जिसको उर्दू में माँ बैन भी कह देते हैं। वैसे उर्दू में जो माँ बैन है वो अरबी के माँ और बैन दोनों को जोड़ करके एक लफ्ज बना लिया। ठीक है, तो वो फिर एक माँ बहन का लफ्ज बन गया, लेकिन अरबी में माँ अलग है जिसका तर्जुमा जो और बहन का तर्जुमा दरमियान, और हुमा हुमा प्रोनाउन है जो कि आसमान और जमीन दोनों की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी इन दोनों के दरमियान जो कुछ है। तो खेल कूद में हमने ये सारी चीजें नहीं बनाई हैं। लव अरदना अन नत्तखिज़ा लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फाइलीन। लव अरदना, अगर हम इरादा करते, लव का तर्जुमा अगर, अरदना हम इरादा करते, अन के, अन का तर्जुमा के, दैट अंग्रेजी वाला। ठीक है, नत्तखिज़ा हम बनाएं या हम लें, लहवन लहव, लहव का मतलब खेलकूद, खिलौना। ठीक है, यानी जो चीज आपको गफलत में डालते हैं ना उसको लहव कहते हैं। तो गाफिल यानी व्हेन यू आर नॉट फोकस्ड। ठीक है, तो अनफोकस्ड तरीके से अगर हम इनको लेना चाहते हैं ना, बगैर किसी मकसद के, बिला मकसद जैसे कहते हैं उर्दू में, बिला मकसद, तो अगर हमारा इरादा होता कि हम इन चीजों को बिला मकसद बनाएं, ठीक है, तो लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो हम बना लेते इनको अपने पास से। क्या मतलब, ये क्या है, ये लत्तखज़नाहु, ये ला ला जो है ना ये नाफिया नहीं है, यानी नफी के लिए जो ला इस्तेमाल होता है ये वो वाला ला नहीं है, बल्कि लत्तखज़नाहु ضرور بالضرور لام تاکید والا، ٹھیک ہے، ضرور اتخذناہ ہم بنا لیتے اس کو مل لدنا اپنے پاس سے، لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کی پوزیشن کے اندر ہوتا ہے نا، جو پاس اس کو لدن، اس کے لیے لدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لدنا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب اس کی تفسیر بڑی گہری ہے تو وہیں پہ اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم کوئی کھیل والی چیز بناتے، کوئی غفلت والی چیز بناتے نا، تو ہم اس کو اپنے پاس سے بناتے. ان کنا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، فاعل کہتے ہیں کرنے والا، ان کنا اگر ہم ہوتے فاعلین ایسا کرنے والے، ٹھیک نا، یعنی اگر ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ کوئی کھلونا بناتے، کھلونے کے لیے، کھیل کود کے لیے زمین اور آسمان کو بناتے نا، تو وہ ہم پھر اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. اب یہ اپنے پاس سے بنا لیتے کہ مطلب یہ بڑی گہری بات ہے جو کہ پھر معروف مسائل میں پڑھیں گے. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم نقذف بالحق، پھینک مارتے ہیں. قذف یقذف کا مطلب پھینکنا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی پتھر کو پھینکیں، تیر کو پھینکیں یا میزائل کو پھینکیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے قذف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ شاید ایک میزائل کا نام بھی کوئی قذف میزائل رکھا ہوا ہے پاکستان والوں نے. تو خیر، نقذف بالحق، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو، یا حق سے پھینک مارتے ہیں، علی الباطل، باطل کے اوپر، ٹھیک ہے، حق کو پھینک مارتے ہیں باطل پر، ٹھیک ہے. فَيَدْمَغُهُ، بس وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. يَدْمَغُهُ، بس جیسے اردو کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے نا دماغ، ٹھیک ہے، تو وہ لگتا ہے کہ یہ دماغ کا لفظ جو ہے نا وہ غیر اردو کے اندر عربی سے الفاظ بہت سارے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ تر اردو جو ہے وہ عربی اور پھر اس کے بعد فارسی پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو اسکرپٹ ہے وہ بھی عربی والا اسکرپٹ ہے. تو اس کا دماغ نکال دیتا ہے، يَدْمَغُهُ، یہاں پہ حضرت نے ترجمہ کیا سر پھوڑ دیتا ہے. جب سر پھڑ جائے گا تو اندر سے دماغ ایکسپوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو حق ہے نا، ہم اس کو پھینک مارتے ہیں باطل کے اوپر، بس وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زاہق، بس پھر وہ بھاگ جاتا ہے. زاہق کا مطلب یعنی جاتا رہتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. تو باطل یعنی بھاگ جاتا ہے وہاں سے، باطل فرار اختیار کر لیتا ہے. جیسے نا جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا، بے شک باطل تو بھاگنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. حق کے سامنے باطل کھڑا نہیں رہ سکتا، جم نہیں سکتا، تو وہ زاہق بھاگنے والی چیز ہے، بھاگ جاتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. تو وہی زاہق کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا، بھاگنے والا، ٹھیک ہے. تو جب باطل کو اس طریقے سے حق توڑ دیتا ہے نا، تو پھر باطل جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے الویل ہے. لکم کا مطلب تمہارے لیے، الویل، ویل کا ترجمہ بربادی، وہی جیسے ویل لکل ہمزہ ہے نا، بربادی ہے اس کے ہمزہ کے لیے. تو وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے بربادی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، ان چیزوں سے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو، ٹھیک ہے. تصفون یعنی تم بتلاتے ہو، جو باتیں تم کرتے ہو نا، تو تمہارے لیے ان کی وجہ سے بربادی ہے، خرابی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم ترجمہ روک لیتے ہیں، اس لیے کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگلی کلاس آپ کی شروع ہونی ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس ترجمے پر، یا پیچھے جو معروف و مسائل خلاصہ تفسیر ترجمہ پڑھا تھا، تو پوچھ لیں. اس کے لیے انتظار کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، بیچ میں بھی آپ لکھ کر کے پوچھ سکتی ہیں. بس آخر میں کلاس ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھ لیتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں کوئی سوال جو کہ اب تک روک کے رکھے ہوئے. चलिए, अगर सवाल नहीं है तो फिर यहाँ पे रोकते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह यही से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। टीचर अभी कॉलेज लेके आज एडमिन नहीं है, तो आज इसको किसी को एडमिन बनाना हो। अच्छा, आपकी टीचर आ गई हैं हदीस की, तो उनको पोस्ट बना रहे हैं। आप प्लीज़ अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें अपनी क्लास के साथ, रिकॉर्ड टू द क्लाउड वाले ऑप्शन से, ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। अब आप होस्ट हैं, होस्ट से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ ताकि तफसीर की क्लास की रिकॉर्डिंग, एक्चुअली आपको खुद ही बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज अब मैंने होस्ट आपको बना दिया है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग बंद करें, उसमें ऑप्शन होता है इवन फोन में भी।